कार की खिड़कियों से आती धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। सड़क पर भागती गाड़ियों की आवाज, लोगों की भीड़, सब कुछ अपने रफ्तार में था, लेकिन अदिति के अंदर जैसे सब कुछ थम गया था। वो रत्ना देवी के साथ कार की पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बाहर नहीं, कहीं अंदर खोई हुई थीं। रत्ना देवी ने एक नज़र उसकी तरफ डाली और हल्के से मुस्कुराई। क्या बात है अदिति, आज इतनी चुप क्यों हो? शॉपिंग का नाम सुनकर तो तुम्हारी आंखें चमक जाती थीं, और आज तो तुम ऐसे बैठी हो जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अदिति ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वो बन नहीं पाई। कुछ नहीं दादी, बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है। रत्ना देवी ने उसकी बात को ध्यान से सुना, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। कुछ तो है जो तुम्हें अंदर से परेशान कर रहा है। अदिति ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा और फिर नजरें झुका लीं। अगर कोई ऐसा सच हो जिसे बोलना भी जरूरी हो और छुपाना भी, तो क्या करना चाहिए दादी? रत्ना देवी ने उसकी बात सुनकर हल्का से सिर झुकाया, जैसे वो पहले से ही इस सवाल का इंतजार कर रही हूं। सच दो तरह के होते हैं अदिति, एक वो जो बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं, और दूसरे वो जो बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। अदिति की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। तो फिर कैसे पता चले कि कौन सा सच कौन सा है? रत्ना देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत शांत आवाज में कहा, जिस सच को बोलने से तुम्हें सुकून मिले और सामने वाले को दर्द, वो सच अधूरा होता है, और जिस सच को बोलने से कुछ पल का दर्द हो लेकिन आगे चलकर भरोसा मजबूत हो, वही असली सच होता है। अदिति पूरी तरह चुप हो गई। कार अब एक बड़े मॉल के सामने रुक चुकी थी। चलो पहले शॉपिंग करते हैं, फिर बाकी की उलझनें सुलझाएंगे, रत्ना देवी ने हल्के से कहा और कार से उतर गईं। मॉल के अंदर हर तरफ रौनक थी, ब्राइट लाइट्स, म्यूजिक, लोगों की हंसी, लेकिन अदिति के अंदर अब भी वही भारीपन था। वो और रत्ना देवी सीधे एक बड़े डिजाइनर स्टोर में गए। अक्षरा के लिए कुछ खास लेना है, उसकी पसंद थोड़ी अलग है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा लेना चाहती हूँ जो उसे खुद से भी ज्यादा पसंद आ जाए, रत्ना देवी ने कपड़े देखते हुए कहा। अदिति ने भी कुछ ड्रेसेस उठाई, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक हल्के पेस्टल पिंक लहंगे पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखती रह गई। ये अक्षरा पर बहुत अच्छा लगेगा, उसने धीरे से कहा। रत्ना देवी ने वो लहंगा हाथ में लिया और मुस्कुराई। तुम्हें उसकी पसंद इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? अदिति थोड़ा असहज हुई, फिर बोली, क्योंकि मैं उसे समझती हूँ। रत्ना देवी ने उसकी बात पर गौर किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसी वक्त अदिति का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर आर्यन का नाम था। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने कॉल उठाई। हेलो, आर्यन की आवाज में हल्की बेचैनी थी। तुम ठीक हो ना? पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह से मन थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, अदिति ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, बस दादी के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। और तुमने सोचा कुछ? आर्यन ने सीधे पूछा। अदिति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सोच रही हूँ, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। आर्यन की आवाज़ थोड़ी सख्त हुई। अदिति, सच से भागना आसान लग सकता है, लेकिन बाद में वही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। अदिति की आंखें हल्की सी भर आईं। मैं भाग नहीं रही, बस सही वक्त ढूंढ रही हूँ। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी रही, फिर आर्यन ने थोड़ा नरम होकर कहा, ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। अदिति के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मुझे पता है। कॉल कट गई। आर्यन था, रत्ना देवी की आवाज आई। अदिति ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? रत्ना देवी हल्के से हंस पड़ी। जिसके नाम पर तुम्हारी धड़कन बदल जाए, उसे पहचानने के लिए नाम की जरूरत नहीं होती। अदिति थोड़ा शर्मा गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। दादी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मुझे जज तो नहीं करेंगी? रत्ना देवी ने बिना एक पल गवाई कहा। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी, जज करने की नहीं। अदिति ने गहरी सांस ली। उसके अंदर जैसे कोई बड़ा फैसला आकार ले रहा था। अगर मैं किसी को सब सच बता दूं, तो क्या आप मेरे साथ खड़ी होंगी? रत्ना देवी ने बिना हिचकिचाए उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम्हारा सच किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते को सच्चा बनाने के लिए है, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अदिति की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गया, लेकिन इस बार वो आंसू डर का नहीं, हल्केपन का था। थैंक यू दादी। शॉपिंग खत्म हो चुकी थी, बैग से भरे हाथ, लेकिन दिल पहले से थोड़ा हल्का। कार में बैठते ही अदिति ने एक बार फिर बाहर देखा। अब वही सड़क, वही भीड़, लेकिन सब कुछ थोड़ा साफ लग रहा था। उसने धीरे से अपने आप से कहा, शायद सच बोलने का वक्त आ गया है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि घर पहुंचते ही एक और सच उसका इंतजार कर रहा होगा, जो उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता था। कार धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। बाहर का शोर अब कम हो चुका था, लेकिन अंदर एक नया तूफान उठने वाला था। रत्ना देवी ने अदिति की तरफ देखा। उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर थी। तुम बार बार सच की बात कर रही हो अदिति, लेकिन ये तो बताओ, सच किसे बताना है और क्या बताना है? अदिति ने गहरी सांस ली, जैसे अब वो खुद को रोकना नहीं चाहती थी। उसने धीरे से उनकी तरफ देखा। सबसे पहले आपको। रत्ना देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन चुप रही। अदिति की आवाज हल्की कांपी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आप शामली को गलत समझती हैं दादी, लेकिन असल में वो कभी गलत थी ही नहीं। जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती। उसका इरादा कभी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। रत्ना देवी की भौहें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? साफ साफ बताओ अदिति। और फिर अदिति ने सब कुछ बता दिया, हर वो बात जो इतने समय से छुपी हुई थी। शामली का सच, उसके हालात, उसके फैसले और वो कारण जिनकी वजह से वो सब कुछ वैसा दिखा जैसा असल में था ही नहीं। जैसे जैसे अदिति बोलती गई, रत्ना देवी का चेहरा बदलता गया। उनकी आंखों में सख्ती की जगह अब हैरानी थी, और फिर धीरे धीरे वही हैरानी पछतावे में बदलने लगी। कुछ पल के लिए कार में पूरी खामोशी छा गई। रत्ना देवी की नजरें सामने थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रही थी। उनकी आंखें नम हो चुकी थी, होंठ हल्के से कांपे। ये मैंने क्या कर दिया? उनकी आवाज टूट गई। मैंने बिना सच्चाई जाने एक लड़की को इतना गलत समझ लिया, उसे ठुकरा दिया, और वो चुपचाप सब सहती रही। अदिति ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी, आपने जो किया वो उस वक्त आपको सही लगा, क्योंकि आपको सच पता नहीं था। रत्ना देवी ने सिर हिलाया, आंसू अब साफ दिखाई दे रहे थे। नहीं अदिति, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके लिए नहीं पता था भी बहाना नहीं बन सकता। मैंने एक इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं की, और आज जब सच सामने आया तो लग रहा है जैसे मैंने खुद अपने ही घर को तोड़ा है। कार घर के गेट पर रुक गई, लेकिन इस बार सिर्फ सफर खत्म हुआ था, असली सामना अब शुरू होने वाला था।